हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जॉनी के साथ ही जैक ने आंशी को किडनैप कर लिया था। वो आंशी के जरिए विधिक तक पहुंचना चाहता था। किडनैप करने के बाद उसने शाहिद को कांटेक्ट किया और उसके घर पर आंशी को लेकर आया। विधिक उस वक्त शाहिद के घर पर ही था। उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि आंशी के लिए वो ये सब छोड़ चुका था। इसीलिए विधिक ने वहां रुकना सही नहीं समझा और वो वहां से जाने लगा। जैक ने आंशी को बोरे में बंद किया गया था। उसका चेहरा अब तक किसी ने देखा नहीं था। अब तक सबके लिए वो वही लड़की थी जिसने उनका प्लान खराब किया था। जैक और उसका साथी माइकल बोरा खोलने लगे, तभी विधिक वहां से जाने लगा। बोरा खोलते ही जैक ने उसे बाहर निकलते हुए कहा, यही है वो शातिर चिल्लाने वाली लड़की। जैक की आवाज़ सुनकर विधिक ने पीछे मुड़कर देखा तो आंशी जमीन पर थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ था तो विधिक को दिखाई नहीं दिया, फिर भी उसके बॉडी स्ट्रक्चर और बालों से वो उसे अच्छे से पहचान सकता था। शाहिद उसे पलटने वाला था, तभी विधिक ने उसे इशारे से रुकने को कहा और खुद जाकर आंशी को सीधा किया। आंशी को वहां उस हाल में देखते ही विधिक के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। अचानक ही उसकी नज़र आंशी के गाल पर छपे उंगलियों के निशान और गले पर काटने के निशान पर गई। उसके कपड़े भी सही हालत में नहीं थे। आंशी को इस तरह देखकर विधिक की आंखों में गुस्सा था और इस वक्त उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय आंशी की उस खराब हालत के। वहीं आंशी को देखते ही शाहिद भी पहचान गया था। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। विधिक बिल्कुल शांत खड़ा आंशी को देख रहा था, तभी जैक ने आंशी की तरफ इशारा करके बोला, बहुत चालू लड़की है, अपन दो मिनट कॉल करने के लिए साइड में हटा, उतने में माइकल को मारकर भागने लगी। वो तो अच्छा हुआ अपन ने इसे पकड़ दिया और गाल पर एक धर के जमाया, तब जाकर कंट्रोल में आई। और ये माइकल थोड़ा साइको टाइप का है, लड़की देखते ही इसकी नीयत खराब होने लगती है। जैसे तैसे इससे बचाकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ सर, वरना ये तो गाड़ी में ही सब कुछ कर लेता। जैसे जैसे माइकल बोले जा रहा था, विधिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से में उसके हाथ की मुठ्ठियाँ बन गई थीं और अगले पल माइकल और जैक का जो हाल होने वाला था वो सोचकर एक पल के लिए शाहिद भी घबरा गया। विधिक अचानक से जैक की तरफ पलटा और उसके गाल पर पूरे जोर से एक तमाचा लगाया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। विधिक फिर माइकल की तरफ बढ़ा और उसका गला दबाते हुए कहा, छुआ तुमने इसे? हिम्मत कैसे हुई मेरी बटरफ्लाई को तकलीफ़ देने की? उसे तकलीफ़ देने का हक भी मुझे ही है। तुमने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। विधिक को इतना गुस्से में देखकर माइकल और जैक दोनों ही घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्होंने क्या किया है। विधिक ने गुस्से में माइकल का गला पकड़कर उसे दीवार के लगा दिया और फिर अपनी बैग से रिवॉल्वर निकालकर उसके मुंह में घुसा दी। विधिक कर लोट करते हुए बोला, इसी गंदे मुंह से छुआ मेरी बटरफ्लाई को, बेहोशी में किया ना ये, फ़ायदा उठाया मेरी बटरफ्लाई का। विधिक बिल्कुल साइको की तरह बात कर रहा था। माइकल खुद को आज़ाद करने के लिए हाथ पैर चला रहा था। जैक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विधिक के पैरों में गिरते हुए बोला, हम इस लड़की को अच्छे से नहीं जानते, बस इतना पता है कि उस दिन मेले में इसी ने शोर मचाया था। जॉनी ने इसे पहले भी किडनैप करने की कोशिश की थी और ये उसे फंसाकर भाग गई थी। विधिक ने सर्द निगाहों से जैक की तरफ देखकर कहा, मतलब मेरी बटरफ्लाई मेरे अलावा किसी और से भी डर कर रह रही थी। ये सब उस रॉबिन की वजह से हुआ है, उसने मेरी बटरफ्लाई का जीना हराम कर दिया। ऊपर से उसकी शादी ज़बरदस्ती उस एजेंट से करवा दी। अगर वो जिंदा होता तो कसम से एक और बार मार डालता उसे। कुछ भी करने से पहले विधिक ने आंशी की तरफ देखा। उसके गर्दन पर निशान देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने इस गुस्से को शांत भी नहीं करना चाहता था। आंशी की गर्दन के निशान की तरफ देखने के बाद विधिक ने माइकल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगले ही पल विधिक ने पूरी बंदूक की गोलियां माइकल के मुंह में खाली कर दी और उसकी लाश को जमीन पर पटक दिया। माइकल का हाल देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। वो रोते हुए विधिक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। अगर पता होता तो अपन खुद इसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करता। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। विधिक ने जैक का मुंह दबोचा और उसे उठाते हुए कहा, आगे से तो तब होगा ना जब तुम ये करने के लिए जिंदा बचोगे। मेरी बटरफ्लाई के गाल पर थप्पड़ तुमने मारा ना, उसके कपड़ों की ये हालत किसने की? मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता नहीं था, जैक रोते हुए बोला। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। विधिक ने शाहिद की तरफ देखकर कहा, चलो इसके खूबसूरत हाथों को सजा देते हैं, जाओ शाहिद कोई धारदार हथियार लेकर आओ। विधिक के कहते ही शाहिद तुरंत दौड़कर गया और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। उसे देखते ही जैक डर गया। विधिक ने शाहिद के हाथ से चाकू लिया और फिर उसे जैक के हाथ पर घुमाने लगा। जैक कुछ कहता उससे पहले विधिक ने एक जोरदार वार किया और जैक का हाथ कटकर नीचे गिर चुका था। तभी आंशी को होश आ गया था। उसने जैक का हाथ नीचे गिरते हुए देखा तो वो डरकर जोर से चिल्लाई। जैक डर से चिल्ला रहा था, वहीं आंशी की चीख सुनकर विधिक ने आंखें बंद की। फिर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आंशी की तरफ देखकर कहा, सब ठीक है बटरफ्लाई, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है विधिक, तुमने बोला था तुम सब छोड़ दोगे, आंशी ने रोते हुए कहा। विधिक आंशी के पास आया और उसके पास बैठ गया।
उसने आंशी के आंसू पोंछे। विधिक ने आंशी के गाल पर हाथ रखकर काफी प्यार से कहा, छोड़ दिया है बटरफ्लाई, पर ये लोग हैं कि मुझे सुधरने ही नहीं देते। मैं अच्छा खासा यहाँ से जा रहा था, फिर ये तुम्हें यहाँ से लेकर आ गया। ये तो शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा चेहरा देख दिया, वरना पता नहीं ये तुम्हारे साथ क्या करते। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने इन्हें इनके किए की सजा दी है। देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा, तुम्हें तो पता भी नहीं कि बेहोशी की हालत में ये तुम्हारे साथ क्या करने का सोच रहे थे। आंशी ने रोते हुए इधर उधर देखा तो वहां माइकल की लाश वहां पड़ी थी और खून बिखरा था। वो उनसे भागना चाहती थी लेकिन कभी उन्हें इस तरह की मौत तो बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। आंशी और विधिक जिस तरह से बातें कर रहे थे उसे जैक समझ गया कि आंशी विधिक की जिंदगी में एक खास शख्स है, अब वही उसकी जान बचा सकती थी। जैक दौड़कर आया और आंशी के पैरों में पड़ गया। वो रोते हुए बोला, प्लीज मैडम साहब से कहिए कि अपन को जाने दे, अपन ने ये जानबूझकर नहीं किया। आप जानती हैं मैंने आपको क्यों उठाया था, मैंने आपको इस माइकल से बचाया था, तभी उसे बोरे में बंद किया था। विधिक प्लीज इसे जाने दो, आंशी विधिक की तरफ देखकर बोली। आंशी विधिक से बात कर रही थी लेकिन उसका ध्यान आंशी के चेहरे पर था। विधिक ने आंशी के चेहरे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, 1, 2, 3, 4 पूरी 4 उंगलियों के निशान है तुम्हारे गाल पर बटरफ्लाई, मतलब इसने तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ लगाया होगा। जैक आंशी के पास ही बैठा था। विधिक ने उसका चेहरा पकड़ा और चाकू से उसके चेहरे पर कट लगाने लगा। जैक दर्द से चीख रहा था, वहीं आंशी ने अपना दूसरी तरफ कर लिया। जैक के गाल पर 4 कट लगाने के बाद विधिक ने उसे कहा, खुद ही बता दो कि इतनी देर में तुमने और क्या किया मेरी बटरफ्लाई के साथ में।
जितना डर इस वक्त जैक को विधिक से लग रहा था उतना ही आंशी को भी लग रहा था। वो जानती थी कि जैक ने उसे गाड़ी में बिठाने के लिए उसके गले को पकड़कर उसे घसीटा था। उसकी स्किन डेलिकेट थी और वहां जरूर कोई निशान बन गया होगा, ये सोचकर आंशी अपने बालों से नेक को कवर करने लगी। अचानक विधिक ने आंशी की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, माई इनोसेंट बटरफ्लाई, आज भी खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे इतने करीब हो और मेरा ध्यान इसकी सड़ी हुई शक्ल पर होगा। विधिक ने जैक को छोड़ा और फिर आंशी के बिल्कुल करीब आ गया। उसने आंशी की गर्दन से बालों को हटाया तो वहां पर जैक की उंगलियों के निशान बने हुए थे। उसे देखकर विधिक हंसने लगा। उसकी हंसी से इस वक्त उन दोनों को ही डर लग रहा था। विधिक गुस्से में जैक की तरफ बढ़ने लगा, तभी आंशी ने विधिक को पकड़ा और कसकर गले लगा लिया। वो जानती थी कि वही विधिक का गुस्सा शांत कर सकती है। आंशी ने सुबकते हुए कहा, विधिक मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो ना चलते हैं यहाँ से, मुझे इस वक्त ये सब नहीं देखना, घर चलते हैं, तुम्हारे हमारे घर। विधिक की आंखें बंद थी, वो धीरे से बोला, यू नो व्हाट बटरफ्लाई, मुझे तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है, आज भी कुछ नहीं बदला, 2 साल पहले भी यही एहसास होता था जब तुम करीब आती हो और आज भी यही हो रहा है, ठीक है अपने घर चलते हैं। बोलते हुए विधिक आंशी से अलग हुआ। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। विधिक आंशी के बालों को सही कर रहा था, फिर उसकी नज़र उसके कपड़ों पर गई जिसकी एक स्लीव फटी हुई थी। विधिक ने अपना ब्लेजर निकाला और आंशी को पहना दिया था। वो दोनों वहां से खड़े हुए और फिर विधिक आंशी का हाथ पकड़कर जाने लगा। विधिक जैक को जिंदा छोड़कर जा रहा था, ये देखकर जैक ने राहत की सांस ली। आंशी की वजह से उसकी जिंदगी बच गई है। उसका हाथ आंशी की कमर पर था और वो शाहिद के घर से बाहर निकल रहे थे। तभी विधिक ने पीछे मुड़कर शाहिद की तरफ देखा और उसे आंखों ही आंखों में एक इशारा किया। शाहिद उसके इशारे को अच्छे से समझ सकता था। विधिक ने अपनी जिंदगी में किसी को माफ करना नहीं सीखा था, उसकी डिक्शनरी में सिर्फ सजा देना था, और जैक की इतनी बड़ी गलती पर वो उसे माफ नहीं कर सकता था। वो आंशी के साथ वहां से निकल गया। जैक अपने कटे हुए हाथ के साथ उठकर बाहर जाने लगा, तभी शाहिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या लगा था बे उस लड़की पर हाथ डालेगा जिसमें विधिक राणा की जान बसती है, और वो तुम्हें आसानी से जाने देंगे, गर्दन पकड़ी थी ना तुमने उनकी, वहां का बदला लेना बाकी रह गया था। शाहिद ने जवाब दिया और उसे घसीटते हुए चाकू के पास लेकर आया। अगले ही पल शाहिद ने जैक की गर्दन काट दी थी और उसकी लाश नीचे पड़ी हुई थी। उसका काम होते ही उसने विधिक को मैसेज किया और फिर उन दोनों की लाश ठिकाने लगाने के काम में लग गया। वहीं आंशी को विधिक के पास इस तरह नहीं पहुंचना था। उसके अचानक विधिक के पास जाने से अमन और उसकी टीम की काफी हद तक प्लानिंग फेल हो गई थी। वो आंशी को सब कुछ अच्छे से समझाने वाले थे कि अगर उनसे उसका संपर्क टूट जाए तो उसे किस तरह मैनेज करना है, और साथ ही उसकी बॉडी में वो ट्रांसमीटर भी फिट होना था। जैक की वजह से आंशी विधिक के पास टाइम से पहले ही पहुंच चुकी थी, तो वहीं आंशी की सिक्योरिटी एजेंसी ऑफिस न आने पर अमन परेशान हो गया था। अमन ने घर पर कॉल किया और आंशी के मोबाइल पर भी कॉल ट्राई किया, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अमन आंशी के लिए परेशान हो रहा था, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। ये विधिक का कॉल था। अमन की कॉल रिसीव करते ही विधिक ने कहा, गुड बाय मिस्टर कपूर,
सोचा एक आखिरी गुड बाय कॉल बनता है। थैंक यू मेरी अमानत को इतनी अच्छे से संभाल कर रखने के लिए। वैसे मैं किसी को थैंक यू बोलता तो नहीं, लेकिन बटरफ्लाई के चक्कर में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मेरी बटरफ्लाई अपनी सही जगह पहुँच चुकी है। अब तुम हम दोनों की जिंदगी से दूर रहना। मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा, तो तुम भी अपनी नाक मेरे मामलों में अड़ाने की कोशिश मत करना। अलविदा। अमन को बात करने का मौका भी नहीं मिला और विधिक ने कॉल कट कर दिया। अमन को आंशी पर गुस्सा आ रहा था। सब कुछ पता होने के बावजूद वो टाइम से पहले ही विधिक के पास चली गई।